मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 29 मई 2017 है और मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस लाइफ मैनेजमेंट के लिए मैंने जो विषय चुना है वह विषय आप यूं कह सकते हैं कि फ्राइडे को जिस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की थी यह लगभग लगभग उसी का ही अगला पार्ट है, और इसे यदि आप कोई अलग से नाम ही देना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो लोग असफल होते हैं, जिन्हें जिंदगी में सफलता मिलती है, क्या उनके सोचने समझने का तरीका दूसरे लोगों से अलग होता है, या वो बिल्कुल हम जैसे लोग आम लोगों की तरह ही सोचते समझते हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो सफल हो जाते हैं। भारत जैसे देश के लिए मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर बात करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब चूंकि थोड़े आत्मवादी किस्म के हैं, आत्मा को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को तो देखिए बहुत दूसरे लोग भी मानते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कुछ भाग्य को इसकी वजह से ज्यादा ही तरजीह देते हैं। आत्मवाद होने की वजह से, आत्मवादी होने की वजह से हमें लगता है कि नहीं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी लिख दिया गया है वही होता होगा। आम बोलचाल की भाषा में आपने सुना ही होगा कि समय से पहले और किस्मत से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है, और अगर किस्मत में कुछ लिखा हुआ है तो वो तो होगा ही होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और बचपन से ही ये बातें हमारे दिमाग में भर दी जाती है, पहुंचा दी जाती है, नहीं भर दी जाती है। उसका असर क्या होता है? उसका सीधा असर हमारी सोच पर पड़ता है, जिंदगी के प्रति हमारे नजरिए पर पड़ता है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी घटना को, किसी भी समस्या को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से लेते हैं, और सिर्फ अपने ही बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी। दूसरे भी जब सफल होते हैं और हमें जब उनकी सफलता पर ताली बजानी चाहिए, उन्मुक्त कंठ से उनका जय जयकार करना चाहिए, तब भी हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भाव आता रहता है कि अरे यार देखो, वो तो उसने क्या किया, उसकी किस्मत ही ऐसी थी, तो अब क्या करेंगे, वो अच्छी किस्मत लिखा के लाया था। हम उसने जो वास्तव में मेहनत की है, जो उसकी अपनी देन है, उसको एक प्रकार से नकार ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां हम आइए कुछ ऐसी बातें देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सच में उनके क्या सोचने समझने का तरीका कुछ अलग होता है या क्या होता है। डेफिनेटली अलग होता होगा। मैं मित्रों इसकी शुरुआत करना चाहूंगा हमारे एक बहुत महान व्यक्ति से, और उन महान व्यक्ति का जो नाम है, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मैं आप बताऊंगा, उनका नाम है जो एवरेस्ट पर पहली बार पहुंचे, हिलेरी। हिलेरी दोस्तों, सन 51-52 में, या आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, जो हिलेरी थे वो पहली बार जब एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए गए थे तो वो चढ़ नहीं पाए थे, उनको असफलता मिली थी। सेकेंड टाइम वो उस पर चढ़ पाए। पहली बार में भी जो उनके मार्गदर्शक थे वो हमारे तेनसिंग नोरके ही थे, हमारे यहां के भारत के ही थे, जो उनके साथ फिर बाद में वो भी एवरेस्ट पर पहुंचे। तो दोस्तों, जब अंततः वो सफल हो गए, इसे थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसमें आप मनोविज्ञान को देखिएगा, है ना, कि किस तरीके से मनोविज्ञान काम करता है। और दोस्तों, ये जो मनोविज्ञान काम करता है, यही तो सब कुछ है, यही हमारे पूरे के पूरे मैकेनिज्म को ड्राइव करता है, चलाता है। हालांकि ये मैं बहुत ही छोटा सा वाक्य आपको बताऊंगा इस घटना की चर्चा करते हुए, लेकिन उसमें अद्भुत शक्ति है। जैसे एक परमाणु में विस्फोट हो जाने पर उसकी शक्ति का पता चलता है, उसी तरीके से इस तरह के भाव विचार जब मन के अंदर आते हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं, तब फिर इसकी शक्ति का एहसास होता है। तो दोस्तों, ये बात 1951-52 की है, जब सॉरी 51-52 में तो वो असफल हो गए थे, वो चढ़ नहीं पाए थे, और बाद में जब सफल हो गए हिलेरी साहब, तो उनके स्वागत के लिए लंदन में एक बहुत बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया लंदन में, और मित्रों उस प्रोग्राम में हिलेरी साहब गए, और जहां प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था तो वहीं पर पहाड़ की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। अब चूंकि उन्होंने पहाड़ को जीता था, आप कह लीजिए, तो स्वाभाविक है कि इस तरह के चित्र वहां लगाए गए। तो पहाड़ की तस्वीर जो लगाई गई थी उसको उन्होंने देखा, और देखने के बाद जो उन्होंने कहा, मित्रों मैं वो सुनाने जा रहा हूं और इसको ध्यान से सुनिएगा। उस तस्वीर की ओर देखते हुए उन्होंने कहा था, माउंट एवरेस्ट तुमने मुझे हरा दिया है, परंतु मैं फिर लौटूंगा और तुम्हें हरा दूंगा, क्योंकि तुम जितने बड़े हो उससे बड़े नहीं हो सकते, जबकि मैं हो सकता हूं। यह उन्होंने कहा था। देखिए उन्होंने क्या बात कही कि ठीक है तुमने मुझे हरा दिया, ओके, लेकिन याद रखो मैं फिर लौटूंगा और इस बार जब लौटूंगा तो मैं तुमको हरा ही दूंगा, क्योंकि तुम अब इससे बड़े नहीं हो सकते। तुमको जितना बड़ा होना था तुम उतने बड़े हो चुके हो, जबकि मैं तो हो सकता हूं, मैं होऊंगा ही, और जब मैं लौटूंगा तब मैं अब से कई गुना ज्यादा बड़ा होकर लौटूंगा, और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे और मेरे कद का जो फासला है वो कम हो चुका होगा। केवल फासला ही कम नहीं हो चुका होगा, बल्कि यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारा कद मेरे कद से छोटा हो चुका हो, और तब तो मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। कहने का अर्थ तो यही था। अब आप देखिए कि इसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है और कौन कौन से एक्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं। मित्रों इसमें बहुत जबरदस्त एक्शन है। एक्शन किस बात को लेकर है कि आप बड़े कैसे होंगे। बड़े होने के लिए आपको एक्शन में आना पड़ेगा। आप अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने को अपडेट करेंगे, और तब जाकर के कहीं आप उस स्थिति में आएंगे कि जो एवरेस्ट है आपको आता हुआ देखकर नतमस्तक हो जाएगा। यही तो वो कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अब हार कर कुछ दिनों तक तो अपनी हार की मानसिकता से उबरने की कोशिश कर रहा हूं, अपनी थकान मिटा रहा हूं, और एक दिन फिर तैयार हो गया कि चलो अब दोबारा चढ़ा जाए। अगर मैं ज्यों का त्यों ही फिर वहां चढ़ने जाता हूं तो फिर से वही रिजल्ट आएंगे, क्योंकि जो एवरेस्ट है वो छोटा नहीं हुआ है, उसकी जो समस्याएं हैं उसकी जो कठिनाइयां हैं वो कम नहीं हुई हैं। हो सकता है कि अब जब मैं दोबारा जाऊं तो वहां की जो प्राकृतिक स्थितियां हैं पहले से भी बदतर हो जाए, पहले से भी बदतर हो जाए। तो मैं एक अलग ही किस्म की अब तैयारी के साथ जा रहा हूं, तो मैं तैयारी कर रहा हूं और मैं तैयारी करूंगा। मित्रों ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि वो दोहराते तो हैं एक ही काम जिसमें वो एक बार हार चुके हैं, परास्त हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, फिर से उसमें बैठते हैं, फिर से उसको करते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि वो उसको ज्यों का त्यों दोहराते हैं, अपने आप को रिपीट करते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत परिवर्तन भी करते हैं तो बड़े कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं। कॉस्मेटिक चेंजेस का मतलब है कि ऊपरी ऊपरी तौर पर थोड़ा बहुत लीपा पोती कर ली, बस बात खत्म हो गई। उनको लगता है जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा अपने अंदर परिवर्तन कर लिया है, अपने को बहुत अच्छे से इक्विप्ड कर लिया है, अपने को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तैयारी बहुत ही छोटे स्तर की है, और वो छोटे स्तर की तैयारी इतनी है जैसे कि रेत में आप दो बूंद पानी की जगह आप 10 बूंद पानी गिरा दीजिए तो रेत उसको निगल जाएगी, सूख जाएगी, पता भी नहीं लगेगा, तो उससे तो कुछ अर्थ निकलेगा नहीं ना। मतलब उनमें इतनी तैयारी नहीं है जो स्थितियों में एक रचनात्मक परिवर्तन ला दे, जो सकारात्मक परिवर्तन ला दे। जब वो परिवर्तन लाने की क्षमता हमारी तैयारी में नहीं होगी मित्रों, तो परिवर्तन कैसे आएंगे, रिजल्ट कैसे दूसरा निकलेगा, रिजल्ट वही रहेंगे जो पहले थे, बिल्कुल पहले वाले ही रिजल्ट होंगे। दोस्तों ज्यादातर मामलों में यही होता है, और फिर यह होता है कि फिर अब रिजल्ट नहीं निकल रहा है, अब रिजल्ट नहीं निकल रहा है, तो फिर हम करते क्या है, अंत में जाकर के सरेंडर कर देते हैं, सौंप देते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है फ्रेंड्स कि जब हम सरेंडर कर रहे हैं, जिस बिंदु पर हम सरेंडर कर रहे हैं, जिस वक्त में हम सरेंडर कर रहे हैं, पता लग रहा है कि वही वह वक्त था जब रिजल्ट आने वाला था। जैसे फ्रेंड्स जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर उबलने लगता है। मैंने पानी का पतीला गैस चूल्हे पर चढ़ा दिया है और इंतजार कर रहा हूं, मेरा धैर्य जवाब देने लगा और पता लगा कि अब मैं ऊब गया और ऊबने के बाद मैंने गैस बंद कर दी, गैस बंद कर दी। फिर मुझे लगा कि यार जरा सा देखें तो कि टेम्परेचर इस पानी का अभी है कितना, और जब मैंने उसके टेम्परेचर को नापा तो पता लगा कि वो टेम्परेचर था 99.9, यानी कि बस उबलने ही वाला था। अगर मैं 2 सेकंड 5 सेकंड रुक जाता तो पानी उबलने लगता, रिजल्ट घोषित हो जाते और मैं पास हो चुका होता, मुझे सफलता मिल चुकी होती। लेकिन मेरे धैर्य ने जवाब दे दिया, मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सरेंडर कर दिया और उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि एक ऐसी सफलता जो बिल्कुल मेरी बगल में खड़ी थी, बिल्कुल बगल में खड़ी थी और मुझे हार पहनाने वाली ही थी, वो पराजय वाला हार नहीं, विजय का विजयमाला पहनाने वाली थी जो सफलता, उसने उस विजयमाला को विड्रा कर लिया। दोस्तों, अगर आपने टेड टर्नर का नाम सुना हो, टेड टर्नर जो सीएनएन जो पहले न्यूज हुआ, अभी भी चैनल है, दुनिया का बहुत बड़ा न्यूज चैनल है, प्रोग्राम चैनल, टीवी चैनल है, टेड टर्नर कनाडा में इनका बहुत बड़ा ऑफिस है, मतलब कितना बड़ा ऑफिस है मैं बता नहीं सकता। वो विजिटर्स के लिए उसके कुछ हिस्से खोले गए हैं, जहां जो कनाडा घूमने जाते हैं, टोरंटो में है तो वो देखने जाते हैं उसको वहां, चूंकि मैं भी गया हुआ हूं इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी गए हुए हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी, मैं ये बात इसलिए कोट कर रहा हूं मित्रों कि ये बातें हम लोगों के दिमाग में कहीं रह जाती हैं, अटक जाती हैं, एक आदर्श वाक्य की तरह दिमाग की दीवार पर कहीं तख्ती की तरह टंग जाती हैं और बीच बीच में हमें वो ताकत देती हैं, इनसे हम ऊर्जा ग्रहण कर लेते हैं। कभी कभी जब मन उदास होता है, निराश होता है, तो ये बातें हमारे अंदर शक्ति का संचार कर देती हैं। तो इसी तरह का एक वाक्य है टेड टर्नर का, जो उन्होंने अपने बारे में कहा था। इसी से पता लगता है कि बड़े लोग सोचते कैसे हैं, राइट? अभी हमने हिलेरी जी का देखा और अब हम टेड टर्नर का देख रहे हैं। उन्होंने कहा था फ्रेंड्स कि मेरे नाव में कई झंडे हैं लेकिन उनमें एक भी सफेद नहीं है, मैं कभी भी समर्पण नहीं करता। आपको मालूम होगा कि सेना में अगर सामने वाली टुकड़ी सफेद झंडा दिखा रही है, फहरा रही है, तो उसका मतलब ही यह होता है कि अब हम युद्ध नहीं करना चाहते, हम सरेंडर कर रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान है सफेद झंडे की। तो उन्होंने उस यहां सफेद झंडे का प्रयोग किया कि मैं समर्पण करता ही नहीं हूं, मैं मानकर ही नहीं चलता कि मुझे मैं हार जाऊंगा, मुझे हारना है, मैं जीतने के लिए ही काम करता हूं, जीतने के लिए ही पैदा होता हूं, इसलिए जब तक जीवित हूं तब तक मैं लड़ता रहूंगा, सरेंडर नहीं करूंगा। यह है मानसिक प्रबलता, मानसिक शक्ति, फौलादी इच्छा, बर्निंग डिजायर इसी को कहते हैं, फौलादी इच्छा। आप उसे आसानी से झुका नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। ये एक ऐसा पेड़ है, एक मजबूत पेड़ है जो कभी मुरझाता नहीं है, सदाबहार वृक्ष, हमेशा हरा रहता है। ठीक है, हरियाली कभी थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगी लेकिन खत्म कभी नहीं होगी। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।